ओम शांति, ओम शांति। एक बार जरा प्यार से मुस्कुरा के सभी बोलेंगे ओम शांति। आज के इस सायंकालीन सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। विश्व सेवक, विश्व कल्याणकारी, अखिल ब्रह्मांड के नियंता, सर्वशक्तिवान, परमपिता परमात्मा की संतान, सभा में उपस्थित आप सभी समाज सेवियों का, प्रभु रत्नों का, प्रभु प्रेमियों का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। तो ये विशाल डायमंड हॉल आप सभी की उपस्थिति से और अधिक खूबसूरत लग रहा है, और इसमें चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच पधारे हैं हमारे आज के वक्तागण। तो मैं आज स्टेज पर हमारे आदरणीय विजया दीदी, जो विशेष गुलबर्गा से पधारे हैं, हमारे सबके प्रिय वक्ता भ्राता स्वामीनाथन जी, आदरणीय राजयोगिनी प्रेम बहन जी, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बहन ब्रजलता जी, आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी स्टेज पर पधार कर इस मंच को शोभायमान करें। हम सबके बीच ये आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी दीदियां पधार रही हैं। एक बार आप सभी आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी राजऋषि स्वामीनाथन भाई जी का कर्तक ध्वनि से स्वागत करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने हेतु हम सभी मिलकर उस प्यारे प्रभु पिता का आवाहन करते हैं। हमारे बीच में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बहन ब्रिज लता जी भी, जो विशेष हिसार से हम सबके बीच पधारी हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी से भी अनुरोध है, और राजयोगिनी प्रेम बहन जी आपसे भी अनुरोध है कि आप स्टेज पर पधार कर हमारे इस मंच को शोभायमान करें। चांद अधूरा है चांदनी के बिना, समुंदर अधूरा है किनारों के बिना, और ये मंच अधूरा हमारी इन विभूतियों के बिना। तो अभी हमारा ये मंच सज गया है हमारे विशेष प्रबुद्ध वक्तागणों से। तो आइए हम इस सेशन को सफल बनाने के लिए 3 मिनट के लिए प्रभु स्मृति में बैठते हैं और प्यारे प्रभु पिता का आवाहन करते हैं।
देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले
देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले
दीप राहों में जलने लगेंगे जीवन सभी के संवरने लगेंगे देते चले
देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले
निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा भरे तो बोलो कि पत्थर पानी हो जाएगा ईश्वर की पहचान बने प्यार प्रभु का लुटाते चले
ईश्वर की पहचान बने प्यार प्रभु का लुटाते चले
दीप राहों में जलने लगेंगे जीवन सभी के संवरने लगेंगे देते चले
देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले शांतिवन के शांतिवन में डायमंड हॉल के विशाल प्रांगण में आप सभी जो नेपाल और भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे समाज सेवी विशेष रूप से अपना समय निकालकर यहां पर पधारे हैं और समाज की सेवा में आप हर समय तत्पर रहते ही हैं, लेकिन आज हम विशेष वैल्यू बेस्ड सर्विस अर्थात मूल्यों से मूल्यनिष्ठ रूप से हम जीवन में मूल्यों को अपनाकर उसको धारण करके किस तरह से अपनी सेवा को और बेहतर बना सकते हैं। कहा जाता है कि तलवार की कीमत बढ़िया म्यान से नहीं उसकी धार से होती, कपड़े की कीमत उसके रंग रूप से नहीं उसकी तार से होती है। ऐसे ही एक मनुष्य की कीमत उसके बाह्य रंग रूप पहचान से नहीं लेकिन उसके सुंदर चरित्र से होती है। समाज सेवी की भी वैल्यू उसके अंदर छिपे हुए गुणों से मूल्यों से होती। मूल्य अथवा गुण मानव जीवन का श्रृंगार और अगर सेवा में भी निस्वार्थ भाव नम्रता सहनशीलता आदि गुण नहीं है तो वो सेवा कदापि हमें खुशी नहीं दे सकती, दुआओं की प्राप्ति नहीं करा सकती। मान लो किसी के घर में मेहमान आए और उन्होंने 56 भोग बनाए लेकिन जो मेहमान आया उसका प्यार से स्वागत ही नहीं किया, उसे मुस्कुराहट से या दिल से उसे उसका सत्कार भाव ही नहीं किया और सिर्फ वो 56 भोग उसके आगे रखे, तो शायद उस मेहमान के लिए वो 56 भोग भी उसकी भी इतनी कीमत नहीं होगी। तो सेवा भाव, सेवा में गुणों का और मूल्यों का एक बहुत बड़ा रोल है और इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए आज हम सबके बीच में हमारे विशेष महान विभूतियां हैं। तो मैं हमारी बहनों से, ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वो आकर, स्टेज पर आकर हमारे आदरणीय अतिथियों का, हमारे बीच विराजमान राजयोगिनी तपस्विनी दीदियों का, आदरणीय स्वामी नेतन भाई जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप सभी का भी पुनः वारंवार स्वागत है और एक बार आप सभी हमारे स्टेज पर मंचायमान, इस मंच को शोभायमान बनाने वाले इन विशेष हस्तियों के लिए आप सभी एक बार कर्तक ध्वनि से भी उनका भी स्वागत करें और अपना भी विशेष, क्योंकि आप सभी सभा की शोभा है, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज की ये सभा और सभा में उपस्थित हम सभी भाग्यशाली हैं, जो भाग्य विधाता की अनमोल हस्तियां हम सब के बीच पधारी है। आज खिली है ये प्रभु की बगिया, आप सभी चैतन्य फूलों से इन सभी चैतन्य मूर्तियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के स्वागत में कहना चाहूंगी कि सूरज की पहली किरण लाई है खुशियों की बहार, चांद की चांदनी में झूमे सारा संसार और डायमंड हॉल में पधारे आप सभी समाज सेवियों का स्वागत अपरंपार, स्वागत है वारंवार। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में पधारे हैं और ये विश्वविद्यालय जो नव चेतना जागृत कर रहा है, ये नव चेतना जो सारे विश्व को प्रकंपित कर रही है और नव चेतना यही है स्वयं को मूल्यवान स्वशासित करना, स्वयं को अपने जीवन को गुणों से सजाना। और जब हम अपने आप को स्वशासित करेंगे, अपने जीवन को गुणों से सजाएंगे, तो ही हम उत्कृष्टता से समाज की सेवा कर सकते हैं। जीवन ईश्वर के द्वारा मिला हुआ एक सुंदर उपहार है और इस जीवन को जब हम मूल्यों से सजाते, नम्रता, शालीनता, निरहंकारिता, सद्भावना, निस्वार्थ प्रेम, सहयोग, सादगी, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी आदि गुणों से अपने जीवन को अगर हम सजाते हैं तो हमारा जीवन एक मिसाल बन जाता है। तो ऐसे ही अपनी समर्पण भाव से सेवा में समर्पित हमारी बीच आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी विजया दीदी जो गुलबर्गा से विशेष पधारी हैं, आप सब जोन चीफ हैं गुलबर्गा जोन की, आप में अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से इस वसुंधरा को रोशन किया है, तो मैं दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि आज आप विशेष इस विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय राजयोगिनी विजया दीदी गुलबर्गा।
ओम शांति। थक गए हैं सभी? एक बार बोलेंगे एक स्वर में, ओम शांति, और एक बार ओम शांति। सर्वश्रेष्ठ समृद्ध समाज के रचनाकार परमात्मा का आवाहन करते हुए आज के संध्याकालीन सत्र के अध्यक्षा हमारी आदरणीय देवी बहन राजयोगिनी आशा दीदी जी एवं सम्माननीय मंच और सभा में उपस्थित सवेरे से निरंतर ज्ञान पान योग स्नान में व्यस्त समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न उज्ज्वल सितारों को विशेष विशेष इस विषय की ओर अटेंशन खिंचवाते हुए बार बार सबके कानों में ये शब्द गूंज रहे हैं कल शाम से कि सर्वश्रेष्ठ सुंदर समाज की रचना में मूल्यों का क्या योगदान हो सकता है। हम सभी आप सभी विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा समाज की सेवा में अविरत प्रयत्नशील हैं, लेकिन इस परमात्मा के अवतरण भूमि में आपको विशेष परमात्मा के शांति दूतों ने निमंत्रण देकर के बुलाया ताकि एक न्यू डायमेंशन समाज सेवा में एक नई दृष्टिकोण अपना करके सेवा के द्वारा जो आनंद की प्राप्ति होती है संतुष्टता का अनुभव होता है जीवन में उसको और बढ़ोतरी करने की ओर अग्रसर हो। हम देखते हैं कहा जाता वैसे इफ यू सर्व द सोसाइटी टायरलेसली सोसाइटी रिटर्न्स यू एंडलेसली। समाज की सेवा में अथक होकर के आप सेवा करते रहेंगे समाज बहुत कुछ रिटर्न में देता है। रिटर्न लेने की इच्छा लेकर के हम समाज सेवा नहीं करते हैं जरूर, लेकिन एक समृद्ध समाज के निर्माण में हम सभी को अपने अंदर कई मूल्यों की धारणा करते हुए सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो उसमें हर पल हर घड़ी एक प्रकार से जिसका वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता है एक प्रकार से संतुष्टता का आत्मतृप्ति का अनुभव होता है। चाहे आपका नाम न्यूज़पेपर में टीवी में भले पब्लिसिटी में नहीं आता हो फिर भी एक अनोखे प्रकार के संतुष्टता का अनुभव होता है जब सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते किसी को हमारे द्वारा खुशी मिलती है, समाधान मिलता है, शांति प्रेम की अनुभूति करते हैं, तो जो दूसरों को देते हैं, सृष्टि का नियम है, एक्शन रिएक्शन का लॉ है कि जो देते हैं उसका रिटर्न हमें मिल जाता है। एवरी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, नॉट ओनली इन फिजिकल फील्ड, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, समाज सेवा के क्षेत्र में भी हम ये अनुभव करते हैं, जो दूसरों को देते हैं वो रिटर्न होके मिलता है। सेवा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत सारे व्यक्तियों के साथ मिलजुल करके सेवा को उठाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है, एक और एक मिलकर के 11 हो जाता है। ऐसे संगठन शक्ति को मजबूत बना के हम सेवा में आगे बढ़ते हैं, उसमें हजार गुना सफलता को हासिल कर सकते हैं। आप देखते हैं नित्य जीवन में भी सप्त रंगों से इंद्रधनुष बनता है, सप्त स्वरों से संगीत का माधुर्य मिलता है। ऐसे 10 व्यक्ति मिलकर के कोई सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उसका आनंद, उसकी सफलता हजार गुना बढ़ती है। लेकिन लोगों के साथ मिलजुल करके कार्य करने में हमारे अंदर विशेष क्वालिटीज होना आवश्यक है। देखिए, क्वालिटीज की बात करते हैं, मार्केट में जाएंगे, कोई भी चीज खरीदना चाहेंगे तो ब्रांडेड देखते हैं, एक दो जूते खरीदने जाएंगे तो भी कहेंगे लिबर्टी है, कोरोना है, बाटा है। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का मूल्य बढ़ता है जब दिव्य गुणों की धारणा हमारे अंदर होती है। तो आपसी एडजस्टमेंट, जब सेवा में आगे बढ़ना होता है एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चलना होता है, किसी में ज्यादा गुण है, किसी में अवगुण है, लेकिन उस क्षेत्र में आए हैं, सेवा करने का लक्ष्य रखा, यही बहुत बड़ा गुण है। सेवा इटसेल्फ इज ए वैल्यू, सेवा भी बहुत बड़ा मूल्य है, सेवा मनोभावना। तो वो आत्मा, वो भाई या बहन आगे आ रहे हैं सेवा के क्षेत्र में, तो इनकी विशेषता देखते हुए हम देखते, एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है, छोटे छोटे स्क्रू भी जरूरी है उस मशीनरी को चलाने के लिए। ऐसे कोई भी कार्य समाज सेवा का उठाना हो तो छोटे छोटे स्क्रू, छोटे बड़े भाई बहनों की भी आवश्यकता होती है। कोई भी संगठन शक्ति से अलग महसूस न हो, कोई ये फील न करे कि वी आर नेग्लेक्टेड, हमारी कोई वैल्यू इसमें नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है, ऐसे किसी को फील होने न दे। ऐसे सबको लेते हुए, सबको अपने योग्यता अनुसार कार्यभार बांटते हुए, सबको एडजस्ट करते हुए चलने में हमारे अंदर प्रेम का गुण बहुत आवश्यक है। मानवीय जीवन के मूल्य को जानते हुए, हर एक व्यक्ति के जीवन अनमोल है, उसकी विशेषता अनमोल है, उसके तरफ ध्यान रखते हुए हम हर एक को लेकर के आगे बढ़ाते हुए चले, अन्य को आगे बढ़ाएंगे तो हम खुद भी आगे बढ़ेंगे। विशेष इस विश्वविद्यालय में जब 46 इयर्स बैक एट द एज ऑफ 18 मैं इस संस्था में आई तो मुझे यही गुण अच्छा लगा कि जो हमारे बड़े थे उन्होंने हमें आगे रखा और हमें आगे रखते रखते वो खुद भी बड़े बन गए और हमारे अंदर भी यही ज्ञान का बीज डाला। हमने भी बहुत सारे भाई बहनों को आगे रखते हुए प्यार प्रेम से उनको चलाते हुए एक ईश्वरीय सेवा को बढ़ाते हुए संगठन की शक्ति को मजबूत करते हुए जब चलते हैं तो उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। हम सेवा के क्षेत्र में कई समाज सेवी संगठनों से, नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, बहुत सारे समाज सेवी संगठन के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, उनकी विशेषताओं को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होते हैं, मिलजुल करके काम करने में कितने अड़चन कितने ऑब्स्टेकल्स आते हैं और जब वर्णन करते हैं तो हमें शुद्ध अभिमान होता है, गर्व फील होता है कि इस विश्वविद्यालय में कैसे लाखों भाई बहने इकट्ठे होकर के बिना कोई मतभेद के संगठन को उठा रहे हैं। आप यहाँ दो दिन से देख रहे हैं सब कुछ यांत्रिक मैकेनिकल चल रहा है, कोई किसको ऑर्डर नहीं कर रहा है, एक करो ऐसे नहीं बोल रहा है, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिक मशीनरी है। क्यों है? इसके पीछे कारण यही है कि यहाँ का अप्रोच जो है सेवा के क्षेत्र में इनसाइड आउट अप्रोच है। हमेशा लौकिक क्षेत्र में हम देखते सब मिलजुल के रहते, आनंद से व्यवहार करते तो हम उनके साथ खुशी से आनंद से व्यवहार करते हैं। कोई बहुत गंभीर व्यक्ति है स्माइल भी नहीं करता है, शायद स्माइल सेशन पूरा हो गया आपका पीछे, पक्का कराए हमारे गिरीश भाई ने सबको स्माइल सर्विस विद स्माइल, तो कम से कम ये स्माइल तो आप सदाकाल के लिए आपके साथ हमारे भाई ने पक्का कराया तो वो गिफ्ट लेके जाएंगे आप सभी। स्माइल जो हर क्षेत्र में सफलता को हासिल करने में इतना बड़ा सुंदर अस्त्र है तो उसको साथ लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे और अंदर की संतुष्टि, अंदर का आनंद, अंदर का एक पवित्र प्रेम, निस्वार्थ भावना, सामने वाले भाई बहनों का कल्याण हो, उनका जीवन मंगलमय हो, उनको कुछ मिले परमात्मा द्वारा, वो तो मेरे द्वारा ही परमात्मा उनको अनुभव कराएगा, आपके द्वारा अनुभव कराएगा, परमात्मा पिता से उनको कुछ शक्ति मिले, शांति का अनुभव हो, आनंद प्रेम की अनुभूति हो, ये अंदर से जब लक्ष्य रखते हैं और हमारा मन अंतकरण आंतरिक मन हमारा सशक्त होता है, प्यार से भरपूर गंगा बनकर के हम सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं तो हमारे इनसाइड आउट अप्रोच अंदर से भरपूर होकर के बाहर कार्य क्षेत्र में आते हैं तो वही वाइब्रेशन हम फैलाएंगे। आप देखेंगे लौकिक में एक अवगुण का, एक बुरी आदत का कनेक्शन दूसरे अवगुण बुरी आदत के साथ होती है। कोई क्रोध करता है, विशेष उसके अंदर लोभ वृत्ति है या कामुक वृत्ति है, जैसे विकारों का वाइसेस का कनेक्शन एक दूसरे के साथ है वैसे दिव्य गुण भी चैन रिएक्शन में चलते हैं। मेरा अंतकरण प्रेम से भरपूर है, निस्वार्थ निर्मल स्वच्छ प्रेम से भरपूर है तो अवश्य वहाँ शांति का प्रादुर्भाव होगा और वहाँ करुणा दया ऑटोमेटिकली जुड़े रहेंगे। आप देखेंगे जो महान विभूतियां होकर के गए, जैसे मदर टेरेसा करुणामयी थी, महात्मा गांधी जी अहिंसा सत्य के अवतार थे, ऐसे हमारे ब्रह्मा बाबा, पिताश्री ब्रह्मा बाबा इस संस्था के संस्थापक, डायमंड मर्चेंट होते हुए भी उन्होंने सब कुछ मानव कल्याण के प्रति अर्पण किया, सब कुछ समर्पण कर दिया। समर्पणता में इतनी शक्ति है, उसमें सारे ही गुण समाये हुए हैं, जो इस संस्था का फाउंडेशन फाउंडर ने इतना मजबूत त्याग समर्पण के द्वारा डाला, जो आज भी हमारे वरिष्ठ दादियां दीदियां और आगे की पीढ़ियां भी हम देख रहे हैं, वही हमारा फाउंडेशन त्याग तपस्या समर्पण भाव के आगे बढ़ते हुए सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लगता है हमारा जीवन सार्थक किया परमात्मा। हरेक की यशो गाथा अपनी है। हरेक छोटे से छोटे ब्रह्मा कुमारी बहन को पूछेंगे, भाई को पूछेंगे, कोई साधारण से अनपढ़ माता से भी आप चर्चा करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा उनकी यशो गाथा कितनी है, कितना उन्होंने पाया है यहाँ आकर के। क्योंकि एक कोई मनुष्य मात्र का कार्य नहीं है, परमात्मा पिता ने पिताश्री ब्रह्मा को माध्यम बना करके एक सुंदर समाज की रचना का कार्यभार उनके कंधे पर रखा, और हरेक भाई बहने यहाँ अपने को रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन, जिम्मेवारी भी एक वैल्यू है। हमने कहा एक दूसरे के साथ वैल्यूज कनेक्टेड हैं, भाई बहने, जैसे महान विभूतियों ने एक एक वैल्यू को भी अपना अस्तित्व बना के रखने में प्रयोग किया, नित्य जीवन में धारण किया, ऐसे कम से कम एक दो वैल्यूज को भी मजबूत पकड़ के रखेंगे, अपने नित्य जीवन में धारणा में लाएंगे, तो अवश्य हम मूल्यों के आधार से इस समाज की सेवा करके एक सुंदर समाज की रचना के लिए हम निमित्त बन सकते हैं। इस दिशा में प्रयत्नशील होकर के आप एक नई आशा का किरण, प्रकाश का किरण आध्यात्मिक क्षेत्र के द्वारा लेते हुए अपने स्थान पर जाएंगे, और अवश्य इस समाज को सुंदर बनाने में आप सभी भी अपना योगदान देते हुए एक जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजया दीदी का। आपने मूल्यनिष्ठ जीवन, गुणों से मूल्यों से सजी हुई जीवन, कैसे समाज सेवा में एक अपना अहम रोल निभाती है, इस विषय पर बहुत सुंदर वक्तव्य दिए। गुणों से बनता है जीवन गुणवान, मूल्यों से बनता है जीवन मूल्यवान, और मूल्यनिष्ठ सेवा का जीता जागता मिसाल आप सभी यहाँ देख रहे हैं। इस माउंट आबू में ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो मैनेजमेंट है, आप सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह से ये ऑटो मैकेनिकल सिस्टम चल रहा है, कि कोई किसी को कहने वाला नहीं है कि आपको ये करना है, लेकिन सभी अपनी समर्पणता से, अपनी कर्तव्य निष्ठता से यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, और मूल्यनिष्ठ जीवन बनाना यही परमपिता परमात्मा हम सभी को सिखाते। तो आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे बीच में एक विशेष, एक ऐसी अनोखी हस्ती है આદરણીય ભ્રાતા એવી સ્વામીનાથન ભાઈ, આપ એક બાર કટક ધ્વનિ સે હમારે ભ્રાતાજી કે લીએ વિશેષ તાલિયા બજાએ. સ્વામીનાથન ભાઈજી આપ એક મોટિવેશનલ સ્પીકર, આકાશ મેં સિતારે તો બહોત હોતે હૈ લેકિન આપ એક વિશેષ ચમકતા સિતારા હૈ. હર કિસી કે દિલ મેં આપકે લીએ માન હૈ ક્યુંકિ આપ જ્ઞાન રત્નો કી ખાન. આપ ટીચર હૈ, લાઈફ કોચ હૈ, કાઉન્સલર હૈ, કન્સલ્ટન્ટ હૈ, સબકો મૂલ્યનિષ્ઠ જીવન જીને કી કલા સિખાતે હૈ. આપને બી ટેક, MSc ઇન કાઉન્સલિંગ, MBA ઇમોશનલ એન્ડ ક્વોન્ટમ ઇન્ટેલિજન્સ મેં PhD કે ડિગ્રી પ્રાપ્ત કી હૈ. આપ એક રિસર્ચ ગાઈડ હૈ MBA ઓર PhD સ્ટુડન્ટ્સ કે. સિક્યોરિટી સર્વિસ વિંગ, સાયન્ટિસ્ટ ઇન્જિનિયર વિંગ, સોશિયલ સર્વિસ વિંગ, એસે અનેક વિંગ્સ મેં આપ ફેકલ્ટી મેમ્બર હૈ. આપને દેશ વિદેશ મેં અનેકો ટ્રેનિંગ સેશન ઓર્ગેનાઇઝ કંડક્ટ કિયે. ઇન્ડિયન આર્મી, એરફોર્સ, CRPF, BSF એસે અનેક મિલિટરી પેરામિલિટરી ફોર્સિસ મેં આપને અપને મોટિવેશનલ સેશન્સ કે દ્વારા અનેકો કો પ્રેરિત કિયા. ઓર 25 સાલ સે ભી અધિક સમય સે આપ ઇસ ઈશ્વરીય જ્ઞાન યોગ કા અભ્યાસ કરતે હુએ સંપૂર્ણ સમર્પિત રૂપ સે અપની સેવાએં દેતે હૈ. તો એસી વિશેષ અનમોલ હસ્તી હમારે આદરણીય સ્વામીનાથન ભાઈજી હમ સબકે બીચ મેં આ રહે આજ કે વિષય મેં પ્રકાશ ડાલને કે.
આદરણીય સન્માન્ય ચેરપર્સન, આદરણીય સન્માન્ય મંચ એવમ સભા મેં ઉપસ્થિત પરમાત્મા સ્નેહી મેરે દેવી ભાઈઓ ઓર બહેનો, મેં આપકા જ્યાદા વક્ત નહીં લુંગા ક્યુંકિ સેશન કે બાદ મુજે એક ટ્રેન પકડની હૈ. આપ મેં સે કિતનો કો યે સુનકર બડી ખુશી હુઈ વો જરા હાથ ઉઠાએ. વાવ, આપ દિલ કે તો બહોત પ્યારે હૈ. મેં આપકા જ્યાદા વક્ત તો બિલકુલ નહીં લુંગા લેકિન થોડે સમય પર અપની બાત આપકે સામને રખને કી કોશિશ કરુંગા. વૈસે એક સમાજ સેવક જો હોતા હૈ ઉસમે બહોત વિશેષતાએં હોની ચાહિયે લેકિન તીન વિશેષતા બહોત ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ. પહેલી વિશેષતા ઉસમે બહોત ઉમંગ ઉત્સાહ હોના ચાહિયે. દૂસરી વિશેષતા જો સમાજ સેવક હોતા હૈ ના ઉસમે બહોત સંતુષ્ટતા હોતી હૈ. ઓર તીસરા સબસે ઇમ્પોર્ટન્ટ, જો સમાજ સેવક હોતા હૈ ના ઉસકા સ્વાસ્થ્ય બહોત અચ્છા હોના ચાહિયે. અગર ખુદ કા હેલ્થ ઠીક નહીં હૈ તો દૂસરો કી ક્યા સેવા કરેગા. એસે તીનો કો કમ્બાઈન કરકર હમ એક છોટા સા એક્સરસાઇઝ કરેંગે. કોણ કોણ યે એક્સરસાઇઝ સ્વામી ભાઈ કે સાથ કરેંગે વો મુસ્કુરાતે હુએ હાથ ઉઠાએ. વેરી ગુડ. આજ જલ્દી જલ્દી કરેંગે તો મુજે ટ્રેન પકડને મેં આસાની ઠીક હૈ. અરે એક્સરસાઇઝ બહોત સિમ્પલ હૈ. હમારે શરીર કે જો સારા એક્યુપ્રેશર પોઈન્ટ્સ હૈ હમારે હાથો પર હૈ. પહેલા દેખ લેના ફિર કરના. અપના બાયા હાથ એસે પકડના ઓર અપના ઇન્ડેક્સ ફિંગર લેના, ઉસકો તીન બાર ટેપ કરના એસે એસે કરકે ઓર એક શબ્દ કહેના. પતા ક્યા કહોગે? પહેલે દેખ લેના, કહેના વાહ 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 જિંદગી વાહ. ઠીક હૈ? બહોત ખુશી સે કરના. સભી અપના હાથ રખીએ, ઇન્ડેક્સ ફિંગર લીજીએ ઓર તીન બાર ટાઈપ કરકે કહીએ વાહ 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 જિંદગી વાહ. બહોત લોગ તો બહોત અચ્છા કર રહે હૈ લેકિન મેને દેખા કુછ ભાઈ બહેન ઇસ ડાયમંડ હોલ મેં બેઠ કે પતા ક્યા કર રહે હૈ? વાહ 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 જિંદગી વાહ. કાહે કા વાહ વાહ? અબ ખુદ અપને મેં એનર્જી નહીં હૈ, દૂસરો કી ક્યા સેવા કરેંગે? એસે મેં ફિર સે એક્સરસાઇઝ કરુંગા. અગર મેને કિસી કો ભી દેખા વાહ 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 કરતે હુએ તો બડે પ્યાર ઓર મોહબ્બત કે સાથ આપકો મેં યે સ્ટેજ પર બુલા લુંગા. હમારે આદરણીય ચેરપર્સન આપકો ગુલદસ્તા દેકર સ્વાગત કરેંગે ઓર સબકે સામને કરના પડેગા ઓર સારા વિશ્વ દેખેગા આપકો. ઠીક હૈ? રેડી? ચલો. વૈસે મેં કિસી કો બુલાને વાલા નહીં હું. આપકો કરના હૈ તો કરો, નહીં તો છોડો. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ચલ રહા હૈ લેકિન જિતના આપ ખુશી સે કરેંગે ના ઉતના આપકા મસ્તિષ્ક વુડ રિલીઝ હેપી હાર્મોન્સ. ઉસકો એન્ડોર્ફિન્સ કહેતે, એનકેફેલિન્સ કહેતે. ડોક્ટર્સ કી ભાષા મેં ઉસકો ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ કહેતે. ये क्षण जीवित हो, अगला क्षण का कोई भरोसा नहीं है। क्या मैं इस क्षण बहुत खुशी और आनंद के साथ क्या मैं जी सकता हूं? इट्स द फर्स्ट स्टेप फॉर सोशल सर्विस। ओके, चलिए सभी बहुत खुशी से करिए, लेफ्ट हैंड रखिए और बड़े खुशी से बोलिए, वाह 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 जिंदगी वाह, वेरी गुड। अब एक काम करिए, दो फिंगर लीजिए और कहिएगा वाह 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 मेरा परिवार वाह, करिए। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे समाज सेवी हो, कितना उमंग उत्साह है। लेकिन आप में सत्यता भी बहुत है। मैंने आप में से पूछा कि कितने लोग चाहते हैं कि स्वामी भाई बहुत कम बोले, तो आपने मुस्कुराते हुए हाथ उठाए, मतलब आप में सत्यता तो है। अब एक और प्रश्न मैं पूछूंगा, भगवान के दरबार में हो तो सत्य जरूर बताना। आप में से कितने भाई बहन इस डायमंड हॉल में बैठकर पीछे जो काम चल रहा है उसके आवाज से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो जरा हाथ उठाएं सत्यता से। अच्छा, अब कुछ लोग आजू बाजू देख रहे हैं भाई हाथ उठाएं या नहीं उठाएं, राइट। चलो चलो ठीक है, लेकिन सच्ची बात मैं बताऊं, कल मतलब 15 सितंबर इट वॉज इंजीनियर्स डे भारत में, और कल 17 सितंबर इट इज विश्वकर्मा दिवस, विश्वकर्मा कल का दिन, और कल का दिन पूरे भारत में और शायद विश्व में भी हो सकता है जो कर्म योगी है ना उनका हम सम्मान करते हैं, राइट। तीन प्रकार की सेवाएं होती है दोस्तों, एक होता है मनसा, दूसरा होता है वाचा, तीसरा होता है कर्मणा। आप ये आवाज से अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, राइट, लेकिन महसूस करिएगा उस आवाज आप तक पहुंचने के लिए करीब 30-40 फुट का जगह है, लेकिन वो जो कर्म योगी है ना इतने हाइट पर बैठकर, इस प्रोग्राम के पहले मैंने आकर उनको थोड़ा देखा, इतने हाइट में वो बैठकर सुबह से शाम तक वो कर्म कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन करें, वो भी सेवा कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सर्विस। और अगर इस छोटी छोटी आवाज से अगर हम डिस्टर्ब हो रहे ना दोस्तों, अंतिम समय परमात्मा भी इस कलयुगी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए ऐसे ही आवाज करेंगे प्रकृति के द्वारा, चाहे भूकंप हो, चाहे सुनामी हो, चाहे वो अग्नि हो, कैसे भी हो, अगर इस आवाज से अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो जस्ट महसूस करिए, अगर अंतिम समय पर ये हलचल होगी तो हम दूसरों को कैसे सेवा कर सकते, वो कर्मणा सेवा कर रहे हैं, राइट। हम एक काम करेंगे, वाचा सेवा करेंगे, और पता क्या करेंगे, तीन फिंगर को उठाकर वाह 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 ये कर्म योगी वाह कहना, सभी करो वाह 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 ये कर्म योगी वाह, अपने लिए जरा जोर से तालियां बजाइए, वाह। और कुछ समय के बाद जब ये सेशन खत्म होगा ना दोस्तों, तो जब आप यहां से गुजरेंगे ना, तो भाइयों को बहुत प्यार से दृष्टि देना और उनके प्रति एक अच्छी फीलिंग रखना, और वो जो फीलिंग आप करते हो परमात्मा के हिसाब से सबसे बड़ी सेवा है, और वो है मनसा सेवा, राइट। इस आवाज से डिस्टर्ब नहीं होना। अच्छा, अंतिम समय ये कलयुग परिवर्तन होगा तो प्रकृति जो है ना बहुत ढिझुम ढिझुम करेगी। आप में से कौन कौन है जो उस ढिझुम ढिझुम से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं, वाह अभी हाथ उठा रहे सब। तो एक काम करिए, चार फिंगर को लेकर कहिए वाह 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 ये प्रकृति वाह, करिए। बहुत अच्छा। और ऐसे अंतिम समय पर अपनी रक्षा के लिए, स्वरक्षा के लिए दोनों हाथ उठाकर पांचों फिंगर को लेकर कहेंगे वाह वाह। देख लीजिए, आपको ट्रेन पकड़ना है या स्वामी भाई को ट्रेन पकड़ना है, अभी सुनो ना, आप तो मुझे धक्का देके भाग रहे भगा रहे। हाँ सुनो, अभी है ना, दोनों हाथ जोड़कर बड़े प्यार से कहना वाह 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 वो परम रक्षक वाह, करिए। यस, ये जो आपने मनसा वाचा कर्मणा जो 2-3 मिनट में किया ना, दैट इज एक्चुअल सर्विस। वैसे आज के टॉपिक के हिसाब से मैं थोड़ा सा टच करूंगा, एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को सेशन ले रहा था और मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। मैं कहा, बच्चों मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका जीवन में क्या बनना है। तो एक छोटा बच्चा सामने बैठा था, वो हाथ खड़े कर कहता है, सर ऑप्शन सर। मैंने, कौन बने, करोड़पति चल रहा है? हाँ सर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हमने कहा चार ऑप्शन बताते हैं और ये चार ऑप्शन में आप चूज करना। ऑप्शन ए इंजीनियर, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर, ऑप्शन डी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा व्यक्तित्व। बताइए सही जवाब कौन सा है। अगर पहला होगा तो ऐसे करना, दूसरा होगा तो ऐसे करना, तीसरा होगा तो ऐसे करना, चौथा होगा तो ऐसे करना। वाह, आप तो एकदम बुद्धिमान ऑडियंस है। करेक्ट। और जब मैंने छोटे छोटे बच्चों से कहा, सबने कहा सर ऑप्शन डी लॉक कर दो, सर ऑप्शन डी लॉक कर दो। एक अच्छा व्यक्तित्व बनना। तो मैं बच्चों का वो समर कैंप कर रहा था, एक हफ्ते का कोर्स था। तो मैंने उनको कहा एक होमवर्क देते हैं, आज से लेकर 7 दिनों तक, क्योंकि आपने लक्ष्य बताया कि यू हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक हफ्ता चाहे कुछ भी हो जाए एक अच्छा बच्चा बनना। और मैंने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चा बनना मतलब क्या करना है? सर जल्दी उठना, सर जल्दी सोना, सर अच्छे से पढ़ाई करना, सर। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन एक अच्छा बच्चा मतलब एक हफ्ता अपने माता पिता को बहुत सम्मान करना और एक हफ्ता माता पिता पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। बच्चों को मैंने होमवर्क दिया। मैंने कहा दूसरा दिन जब आप आते हो ना सुबह शिविर के लिए, तो अपने माता पिता से सिग्नेचर लेकर आना कि यस्टरडे, या मतलब जिस दिन, राइट, आई वॉज अ वेरी वेरी वंडरफुल चाइल्ड, और माता पिता उसको साइन करेंगे। और अगर आपने 7 दिन वो सिग्नेचर लेकर आए तो 7वां दिन हमारे आदरणीय संतोष दीदी जी चीफ गेस्ट हैं, तो वो आप सबको गिफ्ट देंगे। ठीक है, अब बच्चों को गिफ्ट की बड़ी इच्छा होती है। तो दूसरा दिन जैसे ही मैं शिविर में पहुंचा, सारे बच्चे, सर सर मम्मी ने साइन किया, सर पापा ने साइन किया। मैंने कहा अच्छा माता पिता से हम फोन करके पूछेंगे, सर फोन करिए सर। कल पूरा दिन हमने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, माता पिता को बहुत रिस्पेक्ट किया। हमने कहा ठीक है। एक हफ्ता बच्चों ने बराबर सिग्नेचर लेकर आए और 7वां दिन हमारी आदरणीय संतोष दीदी जी आए और सबको गिफ्ट दिया। प्रोग्राम खत्म हो गया। दूसरे साल इसी प्रकार का शिविर था, तो हमने सब जगह एडवर्टाइजमेंट किए कि ब्रह्मा कुमारीज बच्चों का कैंप कर रही है, समर कैंप, आप बच्चे जरूर आना। तो एक 7वीं कक्षा की एक बच्ची आई, बोला सर पिछला कैंप हमको बहुत अच्छा लगा, इस बार भी हम अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट करते हैं। हमने पूछा क्या रिक्वेस्ट है? बोला सर पिछली बार जो माँ का होमवर्क दिया था ना वो इस साल मत देना सर। भैया क्यों, क्या हुआ? आपको अपनी मम्मा को रिस्पेक्ट देकर अच्छा नहीं लगा क्या? बोला सर स्वामी सर एक सच्ची बात बताओ। मैंने कहा बताइए। बोले सर पिछले साल हमने ये अनुभव किया कि मम्मा तो बहुत खुश थी लेकिन हमको कुछ फायदा नहीं हुआ उससे। हमने कहा क्यों नहीं, क्यों भाई फायदा क्यों नहीं हुआ? बोले सर पहले अगर हमको थोड़ा पैसे की जरूरत थी, चॉकलेट खरीदने का मन करता था, आइसक्रीम खरीदने का मन करता था, एक नया फ्रॉक खरीदने का मन करता था, तो पैसे चाहिए होते ना, तो मैं मम्मा से बहुत प्यार से कहती थी मम्मा थोड़ा चॉकलेट के लिए पैसे दे दो, आइसक्रीम के लिए पैसे दे दो। मामा कहते नहीं नहीं नहीं, चॉकलेट खाने से, आइसक्रीम खाने से आपके दांत खराब होंगे, हेल्थ खराब होगा। तो मैं क्या करती थी, एकदम हटियोगी बन जाती थी, बहुत जिद करती थी, भोजन नहीं करती थी, चिल्लाती थी, रोती थी। मामा को इतना गुस्सा आता था, मामा थका करके मुझे चाटा मारती थी, तो मैं और जोर से रोने लगती थी। फिर मामा को थोड़ा मेरे पर रहम आता था, बड़े प्यार से आती थी और मुझे 10 रुपए देती थी और कहती बच्ची कोई बात नहीं आप आइसक्रीम खरीद लो। यह स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करता था। सर पिछले साल एक हफ्ता मम्मा से मैं बहुत प्यार से 10 रुपए मांगा, एक हफ्ते के बाद पता चला कि मेरी मम्मा अति इंद्र आनंद में है लेकिन वो 10 रुपए दे ही नहीं रही है। और उस बच्ची ने मुझसे पूछा वाई शुड आई बिकम गुड, मैं क्यों अच्छी बनूं भाई, कोई फायदा नहीं होता है। और जैसे ही इस बच्ची ने कहा तो मेरी अवस्था पता कैसी थी, उस सीता जैसे, धीरे धीरे धरती हिल रहा और मैं टिंग 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 करके नीचे जा रहा हूं, क्योंकि 20 वर्षों से मैं बच्चों को कह रहा था कि आप मूल्यनिष्ठ बच्चे बनो, वैल्यू बेस्ड चाइल्ड बनो। पर ये बच्ची कह रही है भाई इससे कोई फायदा नहीं होता है, तो बताइए मुझे इस बच्ची को क्या जवाब देना चाहिए। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने कहा कोई बात नहीं धीरज रखो, मम्मा आपको 10 रुपए दे देगी। तो बच्ची मुस्कुराते हुए कहते हैं सर आपको मेरी मम्मा का संस्कार नहीं पता है, मेरा आइसक्रीम पिघल जाएगा, मैं कब तक प्यार से बोलते रहूं, अरे कोई तो अंत होना चाहिए। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन उसके चेहरे में संतुष्टता नहीं आई। तो मैं बहुत लोगों से पूछने लगा कि इस बच्ची को मैं जवाब क्या दूं। एक भाई ने मुझे जवाब दिया, बोला अरे आप तो ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय के नियमित विद्यार्थी हो, आपकी शिवानी बहन तो बैलेंस शीट ऑफ लाइफ पर क्लास कराते, बस उसको बैलेंस शीट के बारे में बता दो। मैंने कहा उस बच्चे को मैं कैसे बताऊं। बोला स्वामी भाई आप तो शिक्षक हो, बच्चों के नफ्स को देखकर समझा दो। मुझे बात समझ में आ गई, मैंने उस बच्चे को बुलाया और उनसे पूछा कि आपको 10 रुपए क्यों चाहिए थे, पैसे चाहिए थे ना। हाँ मुझे चॉकलेट खरीदने का था, आइसक्रीम खरीदने का था। मैंने कहा पैसे ही चाहिए थे ना। बोला हाँ। मैंने कहा बच्ची जब आप रस्ते से जाते हो ना तो चौराहे पर कुछ बच्चों को आप देखते हो जो कुछ मांग रहे होते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं, आप में और उन बच्चों में क्या अंतर है। तो फटाक से कहा वो बच्चे गरीब हैं, मैं गरीब नहीं हूं। मैंने कहा नहीं आप अमीर हो, मतलब आप तो पैसे नहीं कमाते हो ना। नहीं मेरे पापा बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं। मैंने कहा बच्ची आपने कभी सोचा कि आप ऐसे परिवार में क्यों जन्म लिए जहां आपके माता पिता एकदम धनाढ्य हैं, संपन्न हैं। तो सोचने लगी, तो मैंने उस बच्ची को समझाया दो प्रकार के धन होते हैं, एक होता है स्थूल धन विजिबल इनकम और दूसरा होता है इनविजिबल इनकम अर्थात दिव्य धन। मैंने कहा बच्ची एक हफ्ता आपने माँ को बहुत स्नेह दिया, आदर किया, सम्मान किया, आपको 10 रुपए नहीं मिले, स्थूल धन नहीं मिला, लेकिन एक हफ्ता आपकी मम्मा इतनी खुश थी आपकी, आप दुआएं मिल गई, आपका दिव्य धन बढ़ गया। और मैंने उस बच्ची को कहा कि पिछले जन्म में आपने बहुत दिव्य धन इकट्ठा किया होगा जिसके कारण इस जन्म आप एक अच्छे संपन्न परिवार में जन्म लिए, अब आपका यह फर्ज बनता है कि आप अपना दिव्य धन को बढ़ाइए। और जैसे ही मैंने ये बात कहा ना उसके आंखों में वो दिव्यता आ गई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर मैंने उनको डॉक्टर कलाम सर का एग्जाम्पल बताया। डॉक्टर कलाम सर बचपन में बहुत गरीब थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, लेकिन 5 साल राष्ट्रपति बने भारत के, और राष्ट्रपति से जब वो राष्ट्रपति भवन से जब निकल रहे थे, रिटायरमेंट हो गया, तो उनके पास 2 सूटकेस थे, एक सूटकेस में उनके कुछ कपड़े थे, दूसरे सूटकेस में उनके कुछ किताबें थी। लेकिन डॉक्टर कलाम सर जब इस धरती से गए तो इतनी दुआएं इकट्ठा करके गए, और ये बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, ये कार्मिक अकाउंट का रहस्य है कि अगला जन्म वो संपन्न परिवार में जन्म लेंगे। जैसे ही उन्होंने मैंने ये बताया वो इतने खुश हुए। और लास्ट में मैं उस दिन जब अपने कॉलेज में गया तो मैंने MBA स्टूडेंट्स को ये बताया, तो एक विद्यार्थी ने कहा सर आज तक हमको बैलेंस शीट ऑफ स्थूल धन के बारे में बताया गया लेकिन दुआओं से हम अपना दिव्य धन बढ़ा सकते आज तक हमें नहीं पता था, सर थैंक यू वेरी मच, हम अपना दिव्य धन को बढ़ाने की जरूर कोशिश करेंगे। 2 दिन के बाद जब मैं उस क्लास में गया तो एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा सर मुझे अपना दिव्य धन के बारे में आपको एक अनुभव सुनाना है। मैंने कहा बोलिए। बोला सर आपका सेशन से मुझे इतना मोटिवेशन मिला, जैसे ही मैं मुंबई के लोकल ट्रेन में चढ़ा इतनी भीड़ के कुछ पूछो मत, अचानक मुझे सीट मिल गई, मुझे आपकी बात याद आई, मुझे सीट क्यों मिला, मैं बैठ गया। फिर याद आया कि नहीं मुझे अपना दिव्य धन बढ़ाना चाहिए, तो मैंने देखा उस कोच में एक वृद्ध नागरिक बेचारा पिस रहा था। मैंने उनको बोला इधर आइए नजदीक आए। मैं खड़ा हुआ और उस वृद्ध नागरिक को बिठाया, सर बहुत अच्छा लगा लेकिन आगे मैं बताना चाहता हूं मुझे दिव्य धन बढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा क्यों क्या हुआ। बोला सर वरिष्ठ नागरिक बैठ तो गया लेकिन थैंक यू तो छोड़ो मुस्कुराया भी नहीं, मुझे समझ में आ गया ये कलयुग का जमाना है, इसमें समाज सेवा कुछ काम नहीं करता है। मैंने कहा माय डियर बॉय ये दिव्य धन का फिलॉसफी ये है कि आपने उनको सीट दिया आपका दिव्य धन तो बढ़ गया, लेकिन अगर वो वृद्ध नागरिक आपको धन्यवाद बोल देते थे ना आपका दिव्य धन थोड़ा कम हो जाता था, बोला सर, मैंने कहा बोला सर एक काम करूंगा, आज फिर से उस लोकल ट्रेन में चढ़ूंगा, उस वृद्ध नागरिक को पकड़ूंगा और उसको धन्यवाद दूंगा कि उस दिन धन्यवाद नहीं बोला जिसके कारण मेरा दिव्य धन इंटैक्ट हो गया। इसलिए समाज सेवा मतलब अपना दिव्य धन को बढ़ाना। क्या करना है, बस 3 मिनट और लूंगा। हर समाज सेवक जो होता है ना, वो रोटी कपड़ा और मकान देता है, राइट? लेकिन उस समाज सेवा करने के लिए एक चीज बहुत जरूरत है दोस्तों। मैं आपको एक लाइव उदाहरण बताता हूं। अगस्त 2020 में जब कोविड का पीक था, उस समय केरला में एक फ्लाइट है ना, वो दुबई से आ रहा था, फिसल गया और एक्सीडेंट हो गया। पूरा विश्व बंद था, लेकिन वो भारत के लोगों को वो वापस लेकर आ रहे थे। जैसे एक्सीडेंट हुआ, 8 बजे का शाम का टाइम था, तो अचानक इमरजेंसी बुलाया गया और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि उसमें से बहुत लोगों की डेथ होगी और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ था। बोले एक काम करिएगा, आप सब जगह है ना हॉस्पिटल को तैयार करने के लिए बोलिएगा। तो उस इमरजेंसी के समय पर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मैसेज मिला कि सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रक्त नहीं है, देयर इज नो ब्लड, क्योंकि जरूरत नहीं था और इतने सारे लोग इंजर्ड हैं तो रक्त कहां से आएगा। तो कलेक्टर ने कहा एक अनाउंसमेंट करो कि इन पैसेंजर्स जो इंजर्ड हैं उनको रक्त की जरूरत है, आप प्लीज रक्त दान करिएगा। तो कुछ लोगों ने कहा सर कोविड का प्रोटोकॉल चल रहा है सर, अगर कोई भी बाहर निकलेगा तो उसको 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो क्या हम ये बोलें कि अगर आप रक्तदान दोगे तो क्वारंटाइन में होना पड़ेगा? बोला हाँ, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है। एक ऑफिसर ने कहा सर रक्त की बहुत जरूरत है, अगर आपने क्वारंटाइन कर दिया तो आपको रक्त नहीं मिलेगा। बोला नहीं, ये भारत सरकार का प्रोटोकॉल है, हम चेंज नहीं कर सकते, देखते हैं कितने लोग आते हैं। तो बहुत लोगों ने कहा सर एक व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। बोला पहले देख लेते हैं फिर क्या करना सोचेंगे। 8 बजे एक्सीडेंट हुआ, 8:15 बजे मीटिंग कर डिक्लेयर किया गया कि रक्त की बहुत जरूरत है, क्योंकि 150 से ज्यादा लोग बहुत ग्रीवियसली इंजर्ड हैं। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, 30 मिनट के अंदर इतनी जोर से बारिश गिर रही थी, उस बारिश में है ना आपने वो सीन देखा होगा है ना, हर हॉस्पिटल के बाहर इतनी लंबी क्यू खड़ी थी, हमको रक्त देना है, हमको रक्त देना है। सारे रिपोर्टर्स ने उसको फोटो खींचा, सारे विश्व में भेजा। कुछ लोगों ने कहा आपको पता है अगर आप रक्तदान दोगे तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। और सारे लोग ने वो भीगते भीगते बोला हम 14 दिन क्वारंटाइन के लिए तैयार है, गवर्नमेंट क्वारंटाइन में तैयार। बोला ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला वो जो जिनकी ग्रीवियसली इंजर्ड है ना, उनको दर्द हो रहा है, उस दर्द का निवारण के लिए अगर मैं 300 ml खून दे सकता हूं और 14 दिन में लेट सकता हूं तो मेरे को कोई परवाह नहीं है। पता है दोस्तों ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब एक आपदा होती है ना, अंदर का वो देवत्व बाहर अपने आप आता है, अंदर की दिव्यता ऑटोमेटिकली झलकती है। और जो व्यक्ति लेटा हुआ था अपना 300 ml रक्त के लिए और तैयार था 14 दिन मुझे क्वारंटाइन में रहना होगा, उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि जो मैं रक्त दे रहा हूं ये किस व्यक्ति के पास जाएगा, महिला है या पुरुष है, धर्म जाति कुछ नहीं। दैट इज कॉल्ड एज रियल सोशल सर्विस। अगर सोचा जाए दोस्तों, हम किसी प्राकृतिक आपदा का इंतजार नहीं करें। तो लोग पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी किस प्रकार की सेवा कर रही है, तो हमारे एक लाइन में उत्तर होता है हमारी अंदर की जो दिव्यता है बाहर लेकर आने के लिए। इसलिए जितना हम अंदर की दिव्यता को लेकर आएंगे ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर सेवा। 3 प्रकार की सेवा कर सकते हैं, राइट? रोटी कपड़ा और मकान। अगर आप किसी को रोटी कपड़ा मकान दे सकते हो तो जरूर जरूर दीजिएगा, लेकिन हर एक व्यक्ति को खिला नहीं सकता है। 3 बातें बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। सबसे पहली बात, आप किसी को रोटी दे सकते हो या नहीं दे सकते हो अलग बात है, लेकिन अपना भोजन सात्विक भोजन बनाइए। अगर सचमुच आपको लगता है कि अच्छा समाज सेवी बनना है तो आपका भोजन शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए। आप किसी जानवर को मार करके समाज सेवा नहीं कर सकते हो, राइट? और इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियोनार्डो डा विंसी, पाइथागोरस, प्लेटो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, मार्क ट्वेन, कार्ल लुईस, मार्टिना नवरातिलोवा, मोहम्मद अली, अमिताभ बच्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सर महात्मा गांधी जी एंड स्वामी भाई, सब में एक विशेषता कॉमन है, प्योर वेजिटेरियन डाइट। इसलिए आज भगवान के घर पर आए हैं ना, एक लक्ष्य लेकर जाइए कि हमें भी इन लोगों के साथ हमको जुड़ना है। कौन कौन आज ये संकल्प करता है कि आपका भोजन शुद्ध सात्विक शाकाहारी होना चाहिए, वो जरा हाथ उठाएं। वाह, जोर से अपने लिए तालियां बजाइए। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर टू, अगर आप किसी को कपड़ा दे सकते हो तो जरूर दीजिएगा, लेकिन इस विद्यालय में मैंने देखा दिव्य गुणों का आवरण पहनिएगा। सचमुच अगर सेवा करना है तो आज से लेकर एक हफ्ते तक किसी पर गुस्सा नहीं करिएगा। कौन कौन ये लक्ष्य रखते हैं कि बिल्कुल हम गुस्सा नहीं करेंगे, वो जरा हाथ उठाएं। वाह, बहुत अच्छा, यही समाज सेवा है। तीसरा, मकान। आप किसी को मकान बनाकर दे सकते तो जरूर दीजिएगा, लेकिन आज जो सबसे बड़ी जो सेवा है, किसी मकान के वास्तु को ठीक करना। बहुत बड़े बड़े मकान मैंने मुंबई में देखे हैं, इनका वास्तु को ठीक करना। तो सबसे अच्छी बात मैंने इस ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में देखा, परमात्मा को याद करते हुए परमात्मा के वो ज्ञान गुण और शक्तियों के वाइब्रेशंस इस समस्त विश्व में देना, हर आत्मा हर घर तक पहुंचना, ताकि घर घर स्वर्ग बने। एक लास्ट एक्सरसाइज करते, सभी सीधे बैठे, अपना हाथ दोनों ऊपर लेकर जाएं, धीरे से टच करें और ऐसे करें। वाओ, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही राजयोग है। हाथ नीचे रखो नहीं तो आपका हाथ दुखेगा। मन और बुद्धि को ऊपर अपने घर लेकर जाइए, परम धाम, अपने माता पिता को स्पर्श करिए और परमात्मा से सर्व सकारात्मक दिव्य गुणों की वर्षा करिए। क्योंकि आप समझ गए हो तो फिर ये एक्सरसाइज करिए, मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं। मन बुद्धि को ऊपर लेकर जा रहे हैं, धीरे से अपने घर परम धाम पहुंचिए, दिव्य गुणों के स्रोत शिव बाबा को स्पर्श करिए, धीरे से गुणों की बारिश अपने में लेकर आइए, मुस्कुराते हुए करिए और अपना चारों तरफ का एक ऑरा बहुत बहुत पॉजिटिव बनाइए। आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। आप में से कितने भाई बहनों को ये शुभ भावना है कि स्वामी भाई को ट्रेन मिले टाइम पर, वो जरा हाथ उठाए। अरे वाह, मनसा सेवा, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। आप में से कितनों को ये शुभ भावना है कि स्वामी भाई मुंबई सुरक्षित पहुंचे, वो हाथ उठाए। वाह, मनसा सेवा। आपसे मैं परमिशन लेकर, मैं चेयरपर्सन से परमिशन लेते हुए यहाँ से निकलूंगा, लेकिन भाई बहन कितना समाज सेवक बने मैं पूछता हूँ। जब मैं बीच में, मर्यादा नहीं होता है लेकिन फिर भी छुट्टी लेकर चेयरपर्सन से और ऑर्गेनाइजर से छुट्टी लेकर जाऊंगा, कितनों को स्वामी भाई पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, वो जरा हाथ उठाओ। वाह, आप तो बड़े बुद्धिमान हो, राइट। बस यही करना है, हर पल हर क्षण हरेक के प्रति शुभ भावना जरूर जरूर करना, भूलना नहीं। जाते वक्त, कल विश्वकर्मा है, उन कर्म योगी को बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए थैंक यू करके जाना। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
बहुत बहुत सुंदर, हमारे आशा दीदी स्वामी भाई जी को गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे स्वामी भाई ने सभी को बहुत सुंदर एक्सरसाइज भी कराई और जिंदगी में वाह वाह का गीत गाना भी सिखाया। सीखा सभी ने, तो आज से सभी क्या करेंगे, वाह जिंदगी वाह रोज एक्सरसाइज करेंगे। जो भी स्वामी भाई ने हम सबको सिखाई, जब हम जिंदगी में वाह वाह करेंगे और सदा प्रकृति का, परमात्मा पिता का, अपने परिवार का, सबका सदा शुक्रिया करते रहेंगे, तो हमारी जिंदगी सचमुच बहुत वाह वाह वाली जिंदगी बन जाएगी। और जैसे स्वामी भाई जी ने कहा कि हम सबका इनविजिबल अकाउंट है, दुआओं का ब्लेसिंग अकाउंट है, जिसको हम कह सकते हैं दिव्य धन, जो एक सच्ची कमाई है जो परमात्मा हमें करना सिखाता है। तो बहुत सुंदर हमारे स्वामी का, थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहन अन्नपूर्णा जी पधारी हैं, आप हम सबको राजयोग का अभ्यास कराएंगी। तो मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी अन्नपूर्णा बहन का पटके और बैचेस के द्वारा स्वागत करें। और आज के हमारे प्रोग्राम की गेस्ट ऑफ ऑनर बहन ब्रिजलता जी, जो हम सबके बीच में विशेष हरियाणा हिसार से पधारी। मैं आपके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी कि बहन ब्रिजलता जी, आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आईआईटी की स्टूडेंट रही हैं, सेवा भारती कि आप प्रांत उपाध्यक्ष हैं, 2018 में आप महिला मंडल की प्रमुख रही हैं, सेवा भारती के अनेक स्कूलों में आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, कन्याओं को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई केंद्र आदि का प्रशिक्षण भी आपने दिया है, आप राष्ट्रीय सेवा समिति की सदस्य है, प्रभु प्रेमी है, समाज सेवी है, ऐसे विशेष महान विभूति है, आप एक सोशल लीडर है। तो आपसे अनुरोध है कि आज विशेष आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय में पहुंची हैं, तो आज के सेशन में आप अपने विचार हम सबके आगे रखें। बहन ब्रिजलता जी,
ओम शांति। मैं एक छोटा सा त्रुटि सुधार करना चाहूंगी, मैं आईआईटी से नहीं, मैं प्राचार्य रिटायर्ड प्राचार्य हूँ, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ। इस दैवीय मंच पर उपस्थित दिव्य स्वरूप दीदी, जितनी भी दीदी बैठी हैं, मैं उन सबका नाम लेने में अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। आप सबको मेरा दिल से नमन कि मुझे आज आपके सानिध्य में बैठने का मौका मिला। इस दिव्य लोक का मार्ग दिखाने के लिए मैं जहाँ से आई हूँ, हिसार से, ब्रह्म कुमारी केंद्र हिसार, उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत समय से सुना था पर मैं आई नहीं थी। मेरा ये बहनों को वहाँ, हम दीदी लोगों को सुनते रहते हैं, हमारे सेवा भारती के केंद्रों में बुलाते भी हैं, पर जो अलौकिकता हमने यहाँ आकर देखी उससे मैं स्तब्ध हो गई। तो मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और यहाँ भेजने के लिए, यहाँ जाने के लिए मुझे प्रेरित किया। और इस अलौकिक क्षेत्र में आकर मैं अभी तक मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। जैसे मेरे से पहले सब वक्ताओं ने कहा कि यंत्रवत सब चल रहा है, बिल्कुल यंत्रवत भी मैं तो नहीं, यंत्रवत नहीं, ये अलौकिक ही कोई खेल है जो चल रहा है और सब कुछ हो रहा है। अलौकिक शक्तियां यहाँ बसी हैं जो अपने आप जो इस काम को पूर्ण कर रही हैं। मैं बाकी मेरे सामने जितना जनसमूह है, जितनी दीदी लोग हैं और सेवा के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, भारत के विभिन्न भागों से आए हुए और नेपाल से आए हुए, उन सबको भी मैं नमन करती हूँ। मेरा क्षेत्र जो है सेवा उपरांत, मैंने सेवा भारती को चुना, सेवा निवृत्ति उपरांत मैंने सेवा भारती को चुना। सेवा भारती, जैसा कि कहा गया है कि सेवा दो प्रकार की होती है, निष्काम सेवा, सकाम सेवा। सकाम सेवा में हम कुछ ना कुछ प्रतिफल की इच्छा रखते हैं, और निष्काम सेवा वो है जहां हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलता है संतुष्टि के अलावा, मन की खुशी के अलावा। तो सेवा भारती जो मैंने अब तक समझा या मैंने अपने लिए महसूस किया, बिल्कुल निष्काम सेवा है। हम लोग सेवा के लिए जाते हैं, उस वंचित समाज के लिए सेवा करते हैं, उस वंचित समाज को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं जो लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। तो सेवा भारती जो है, काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सेवा जब करनी है तो पैसा बहुत जरूरी है। पैसे के लिए हमारे सेवा भारती के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग भिक्षुक की तरह एक थैला और एक रजिस्टर लेकर एक एक दुकान के ऊपर जाते हैं, और उन लोगों को पता लग जाता है कि सेवा भारती वाले आए हैं, और वो अपनी इच्छा से जो उस थैले में डालते हैं उसे स्वीकार कर लिया जाता है, सहर्ष स्वीकार किया जाता है। उसमें कोई 50 रुपए भी डालता है, कोई 500 रुपए भी डालता है, कोई 5,000 भी डालता है, और कोई 5 लाख भी डालता है। और कुछ लोग जो है वो समय समय पर दान देते हैं। इस तरह से सेवा भारती का कार्य, सेवा भारती अपना कार्य चलाती है। तो सेवा भारती 4 आयामों पर काम करती है। सबसे पहला आयाम है शिक्षा, शिक्षा संस्कार के साथ। कल से जब से ये सत्र शुरू हुए हम बार बार यही सुन रहे हैं कि आज के समय में बच्चों में संस्कारों की बहुत कमी है। तो सेवा भारती का मुख्य उद्देश्य है संस्कार के साथ शिक्षा देना, उन वंचित बस्तियों में स्कूल स्थापित करना, वंचित जो लोग हैं उनकी बस्तियों में विद्यालयों को स्थापित करना और उनको संस्कार देना, साथ में शिक्षा देना। संस्कार की उनकी विशेष कक्षाएं लगाई जाती हैं, बच्चे नमस्कार करना सीखते हैं, और प्रातःकाल में विद्यालय आने पर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जाने पर वो कल्याण मंत्र का जाप करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, जो कि सेवा भारती का मुख्य आप स्लोगन कह सकते हैं। इसके साथ वो अपने काम की समाप्ति करते हैं। इसके अलावा घर में भोजन मंत्र है या और संस्कार, माता पिता को कैसे सम्मान देना है, ये सब करते हैं। तो सेवा भारती जिन क्षेत्रों में है वहाँ के लोगों का, सेवा भारती के स्कूल जिन क्षेत्रों में है वहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमारे बच्चों ने हमारा जीवन बदल दिया है। बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों के कारण शराब पीना, या क्योंकि बच्चों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शराब पीना या और अन्य जितनी बुराइयां थी उनको कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो विद्यालय के साथ कुछ संस्कार केंद्र भी हैं, जो बच्चे बिल्कुल स्कूलों में नहीं जा सकते उनके लिए संस्कार केंद्र, 2 घंटे के लिए 2 घंटे का संस्कार केंद्र खोले गए हैं, उनको अक्षर ज्ञान दिया जाता है और संस्कार दिए जाते हैं। इसके अलावा छात्रावास खोले गए हैं, छात्रावास उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो आगे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और जो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त, अगर वो पढ़ना चाहते हैं आगे तो उन बच्चों को छात्रावासों में रखा जाता है, उनका सारा शिक्षा और रहने सहने का खर्च उठाया जाता है, प्लस टू तक की शिक्षा उनको उन छात्रावासों में रहकर दी, CBSE के स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जाता है, और सारा खर्चा जो है वो सेवा भारती वहन करती है। उसके बाद अगर वो उच्च शिक्षा के लिए आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको विशेष छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं, यानी पढ़ने में पूरा सहयोग दिया जाता है। और मैं बड़े गर्व के साथ सबको यहाँ बताती हूँ कि सेवा भारती, मैं सिर्फ ये हिसार की बात कर रही हूँ, बाकी यहाँ हमारे हरियाणा से और भी सेवा भारती के बहुत से कार्यकर्ता आए हुए हैं। एक विद्यार्थी जो है, दो बहन भाई, उनमें से बहन जो है वो मेडिकल कॉलेज की छात्रा है और भाई जो है वो जिंदल स्टील लिमिटेड मैसूर में वो इंजीनियर है। इसी तरह से और बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने अच्छी जगह रहकर काम कर रहे हैं, क्योंकि सेवा भारती का मुख्य मकसद है शिक्षा के बाद वो बच्चे स्वावलंबी बने और स्वावलंबन यानी कोई ना कोई उनको ऐसा कार्य करवाया जाए जो हमारा दूसरा क्षेत्र है स्वावलंबन का क्षेत्र, उसके बाद भी वो स्वावलंबी बनकर कार्य करें, किसी के आगे रोटी पानी के लिए हाथ ना फैलाएं। तो स्वावलंबी बनाने के लिए हम उनको विभिन्न कौशल सिखाते हैं, जैसे सिलाई केंद्र, मेहंदी लगाना, लड़कियों को मेहंदी लगाना सिखाया जाता है, अचार मुरब्बे सिखाए जाते हैं, इसी तरह से ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज कराए जाते हैं। और जो बंधु लोग हैं उनको टेलरिंग का, कटिंग का या ऐसी कलाएं सिखाई जाती हैं जो कि वो उनका पुश्तैनी कार्य जो अपने वो छोड़ चुके हैं, और ऐसे कार्य उनको सिखाए जाते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हों और अपने जीवन अर्पण जीवन यापन जो है वो अच्छे से कर सकें। तीसरा क्षेत्र जो है, आयाम जो है जिस पर कार्य करता है सेवा भारती, वो है सामाजिक आयाम। समाज में किसी प्रकार के भी भेदभाव को मिटाना ये सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है या जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। समाज में सब मिलजुल कर रहें, इसके लिए मंदिर हैं या कीर्तन मंडली है या किसी क्षेत्र विशेष में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन करना, ताकि कोई ऊंच नीच का भेदभाव वहां ना रहे। और चौथा आयाम जो है वो स्वास्थ्य का है। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं, और इसके साथ कुछ फिजियोथेरेपी केंद्र हैं, कुछ टेस्ट सेंटर्स हैं इस तरह के, और कई हॉस्पिटल्स भी हैं, बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं जो सेवा भारती ने स्थापित किए हैं। तो इस तरह से समाज में समाज का सेवा भारती सहयोग कर रहा है। तो सेवा भारती का एक मूल लक्ष्य है, चलो वहां पर दीप जलाएं, जहां अभी अंधेरा है, जहां कोई नहीं पहुंचा है वहां हम रोशनी करें। तो इन सभी आयामों पर कार्य करते हुए हम ये बात ध्यान में हमेशा रखते हैं कि जो आज सेवित है, सेवित यानी जिसकी सेवा की जा रही है, जिसकी सहायता की जा रही है, उसको इतना स्वावलंबी बनाया जाए कि कल वो सेवक बनके, समाज सेवक बनके समाज में सिर ऊंचा उठाकर खड़ा हो सके। तो सेवक सेवित से सेविक सेवक की उनकी यात्रा जो है तो बहुत कठिन सबके लिए, पर फिर भी सिर उठाकर बहुत से बच्चे जो हैं वो समाज में खड़े हैं। बार बार आज भी और कल भी एक बात आई थी बच्चों की, अब मैं थोड़ा सा इस समाज सेवा के विषय से हटती हूँ कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे मोबाइल देखते हैं, तो हम प्यार से बच्चों को रोकें। एक छोटी सी कहानी है कि एक बच्चे को ये कहा गया कि बच्चा सबसे पहले जो है कोई भी बात होती है वो अपनी माँ को आके बताता है। तो उसने किसी बच्चे से कोई गलती हुई, उसने अपनी माँ को आके कहा, तो माँ ने उसे चांटा मारा। बच्चा रोया, थोड़ी देर रोया, फिर चुप हो गया। फिर थोड़ी कुछ समय के पश्चात उससे कोई दूसरी गलती हुई, तो उससे बच्चे को उसे माँ ने कहा, ठीक है, माँ ने पहले मारा, कहती आने दो तुम्हारे पिता को, तो उनको बताती हूँ। पिता को बताया गया, पिता ने भी खूब पिटाएगी। अब बच्चा ये सोचने लगा कि मैंने सच बोला था और मुझे इतनी पिटाई हुई मेरी, तो क्यों ना उस बच्चे ने घर में वो सच्ची बात जो उससे गलतियां हुई थी बतानी छोड़ दी। और एक दिन ऐसा आया, ना बताने के बाद एक दिन ऐसा समय आया कि उससे कोई बहुत बड़ा जुर्म हुआ, पुलिस आई या समाज में किसी तरीके से घर में पता लगा, माँ बाप तो यही सोचते रहे कि हमारी पिटाई से बच्चा जो है वो चुप हो गया है, वो कोई गलती नहीं करता है। तो बच्चों को प्यार और प्रेम दोनों चीजें चाहिए अगर बच्चे को सुधारना है तो, और मोबाइल से हटाना है तो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।
धन्यवाद बहन ब्रज लता जी का। एक अनाउंसमेंट है, आज रात को 9 से 10 बहुत सुंदर कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, और जिन भाई बहनों ने सौगात नहीं ली है, जो मेहमान यहाँ सोशल विंग में पधारे हैं, वो कल सुबह यहाँ के सेशन के बाद 8 बजे के बाद यहाँ से सौगात लेंगे, और जो बीके गाइड टीचर्स सेवाधारी आए हैं वो 11 बजे ज्ञान मोती में मेडिटेशन हॉल में उन्हें सौगात मिलेगी। और अभी आपके बीच में दो कुमारी आ रही हैं एक नृत्य लेकर, कुमारी रश्मि और कुमारी लावण्या। देखो कान्हा नहीं मानत बतिया, एक बहुत सुंदर नृत्य लेकर आपके सामने ये कुमारी आ रही है। एक बार आप तालियों के साथ इनका उमंग उत्साह बढ़ाएं।
Thank you.
बहुत सुंदर कुमारी रश्मि और लावण्या का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर नृत्य हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है और सफल होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक जुनून होना भी जरूरी है कि मुझे कुछ करना है इस संसार में, मुझे समाज को कुछ देना है। और यही सोच है जो व्यक्ति को एक समाज सुधारक, एक समाज सेवक बनाती है। तो ऐसे ही समाज की सेवा में, ईश्वरीय सेवा में समर्पित हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रेम बहन जी, जो विशेष करनाल से हम सबके बीच पधारी हैं। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आर्ट एंड कल्चर विंग की, सोशल सर्विस विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और आप अनेक वर्षों से समर्पित रूप से अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। करनाल और उससे संबंधित सेवा केंद्रों की आप डायरेक्टर हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आज के प्रोग्राम में आप अपनी इंस्पिरेशन हम सभी को देंगे।
ओम शांति। सर्वोच्च समाज सेवक परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और आज की सभा में उपस्थित मेरे प्रिय समाज सेवक, सोशल लीडर्स, भाई और बहनें, आप सभी भारत के कोने कोने से यहाँ पधारे हैं, आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल से लेकर के हम सभी मूल्यनिष्ठ समाज कैसे बनाया जाए और समाज में मूल्यों की पुनर्स्थापना कैसे की जाए, उस विषय पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ अनुभवी वक्ताओं के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर विचार सुन रहे थे। सचमुच देखने में आता है और हम सुनते भी हैं कि हमारा ये भारत देश, जब इसमें 100% मूल्य थे तो ये सतयुग कहलाता था, जब 75% मूल्य हुए त्रेता युग कहलाने लगा, जब समाज में 50% मूल्य रह गए तो द्वापर युग, और फिर 25% मूल्य रहने पर कलयुग कहलाने लगा। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो हम किस चरण से, किस दौर से गुजर रहे हैं। इस समय को हम कहते हैं घोर कलयुग। जो देवता हुआ करते थे सतयुग में, जिनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहा जाता था, जो हमेशा देने वाले थे, जो हमेशा दाता थे, धीरे 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 कलयुग तक आते आते वो सभी आत्माएं देवता की बजाय क्या बन गए, लेवता बन गई। और इस कदर लेवता बन गए, जो हम कहते हैं कि आज आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, है डराता आदमी और डर रहा है आदमी, मार रहा है आदमी और मर रहा है आदमी, देखो कैसी नादानी कर रहा है आदमी। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज कहने में आदमी है परंतु आदमियत नहीं, मानव कहने को है मानवता है नहीं, और इंसान कहलाते हैं लेकिन आज इंसानियत है नहीं। इसलिए किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा कि हजारों साल से है धरती पर आदमी का वजूद, हजारों साल से है धरती पर आदमी का वजूद, फिर भी निगाह तरसती है आदमी के लिए, फिर भी निगाह तरसती है आदमी के लिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम देखें तो जंगल में शेर शेर से नहीं डरता, चीता चीते से नहीं डरता, सांप सांप से नहीं डरता, लेकिन आज मानव मानव से डर रहा है।
तो आप देखिए कि रोड पर अगर कोई किसी से लिफ्ट मांगता है तो लिफ्ट देने वाला भी डरता है और लिफ्ट लेने वाला भी डरता है कि ना जाने मेरे साथ क्या हो जाए। तो प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास की वैल्यू खोई तो किसने, स्नेह का गुण खोया तो किसने खोया। अगर हम देखें तो आज भी पशु पक्षी भी अपने मूल्यों पर कायम हैं, तटस्थ हैं और अपने मूल्य उनके अंदर आज तक हैं। जैसे कोयल 100 वर्ष पहले मीठा गाती थी, आज भी मीठा गा रही है। 100 वर्ष पहले कुत्ता स्वामी भक्त हुआ करता था, आज भी वो स्वामी भक्त है। अगर वैल्यूज खोई हैं तो इंसान ने खोई हैं। आज दया, अहिंसा, प्रेम, सहानुभूति, स्नेह, करुणा, शुभ भावना, दुआएं, ये सब जो वैल्यूज हैं, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि समाज में क्षीण होती जा रही हैं। इसीलिए ये विषय आज हमें रखना पड़ा। जैसे कोई मकान खंडर हो जाता है, गिर जाता है, तो नए सिर उसको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से आज मानव मूल्य क्षीण हो गए और इसीलिए उनको फिर से उजागर करने के लिए या मानव मन में भरने के लिए ये विषय रख करके हमें ये कॉन्फ्रेंस आयोजन करनी पड़ी। जबकि हम सबको मालूम है कि हमारा भारत तो था ही मूल्यों से ओतप्रोत और मूल्यों की ही यहाँ पर वैल्यू हुआ करती थी। हम गीत भी गाते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। दूसरी लाइन में क्या गाते हैं, जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वैल्यूज देखिए, सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम। सत्य सिर्फ सत्य बोलना ही नहीं अपितु सत्य को संपूर्ण रूपेण जानना। सत्य अर्थात मैं स्वयं कौन हूँ, मेरा पिता परमात्मा कौन है, ये वर्ल्ड ड्रामा क्या है, ये कर्म थ्योरी किस प्रकार से चलती है, आदि आदि जितने भी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर पूर्ण रूपेण उनकी जानकारी होना। और अहिंसा अर्थात सिर्फ मारकाट की ओनली बात नहीं, किसी को मन से भी दुख देना वो भी एक प्रकार की अहिंसा है। सत्य, अहिंसा और दया, तो दया का गुण तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दया धर्म का मूल है कहा जाता है, तो कितना बड़ा ये क्वालिटी है। आज जो आप सभी प्यारे प्यारे हमारे समाज सेवक भाई और बहनें यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो हम समझते हैं कि आज दुनिया में जो बिल्कुल ही मूल्य विहीनता का अंधकार छाया हुआ है, आप सभी उसमें एक आशा की किरण है, आप सभी एक आशा की रोशनी है सभी के लिए। क्योंकि इस समय भी आपके अंदर ये दया और करुणा का और प्यार का, स्नेह का, किसी का दुख दर्द समझने का, ये सहानुभूति का क्वालिटी है आपके अंदर, तब ही करके आप समाज की सेवा कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा विनम्र अनुरोध केवल इतना है कि आप सभी फिजिकल रिक्वायरमेंट सभी की पूरी करते हैं, उनको जो भी चाहिए उपलब्ध कराते हैं, उसके साथ साथ अगर आध्यात्मिकता का समावेश हो जाए, जैसे कि कल से ये बात चल रही है, तो जो आज मूल्य विहीनता इंसान में आ रही है, जिस कारण से ही वो दुखी है, वो कष्ट में है, तो मूल्यों का सागर है एक परमपिता परमात्मा। तो सभी प्रकार के मूल्यों का वो स्रोत है, अगर हम उनके साथ स्वयं को जोड़ देते हैं, यानी सोल का कम्युनिकेशन उस सुप्रीम सोल, उस मूल्यों के सागर और स्रोत के साथ जुड़ जाता है, तो अवश्य ही हर एक आत्मा अपने में मूल्यों का अनुभव करने लगेगी। जिसके साथ साथ फिजिकल रिक्वायरमेंट के साथ आज जो मन की शांति है, मन की शक्ति हर एक को चाहिए, निस्वार्थ स्नेह सभी को चाहिए, वो रिक्वायरमेंट अगर पूरी होगी सबकी, तो एक परमात्मा पिता से ही होगी, क्योंकि वही इन मूल्यों का एक समुद्र है, अथाह है, अनलिमिटेड है। तो इसलिए हमारा विनम्र अनुरोध भी यही है और आप सबके लिए शुभ भावना और दिल की दुआएं भी यही हैं कि आप जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ जाकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो सेवा केंद्र आपके नजदीक हो वहां जाकर के राजयोग मेडिटेशन जो कि 7 डेज कोर्स होता है वो जाकर के सीखें, अपने में भी दिव्यता, अलौकिकता, शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता का समावेश करें, वैल्यूज का समावेश करें, और अन्य जो लोग आपके संपर्क में आते हैं जिनकी आप सेवाएं कर रहे हैं उनको भी धीरे धीरे आपके संपर्क से आपके संग का रंग लगेगा और वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अवश्य उनका जीवन भी मूल्यवान बन जाएगा और मूल्यों से ओतप्रोत हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा समाज जो कहें कि मूल्यनिष्ठ समाज बन जाएगा जिसकी हम सभी शुभ इच्छा रखते हैं कि हमारे जो इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वैल्यूज थी वो भले नैतिक मतलब मॉरल वैल्यूज हों, सोशल वैल्यूज हों या डिवाइन वैल्यूज हों या स्पिरिचुअल वैल्यूज हों या ह्यूमन वैल्यूज हों, सब प्रकार की वैल्यूज जब इंसान में भर जाएंगी तो सही मायने में वो समृद्ध समाज तभी बनेगा, सशक्त समाज तभी बनेगा, दिव्य गुण युक्त समाज तभी बनेगा, सुख शांतिमय समाज तभी बनेगा। और वो किसी एक से नहीं, शुरुआत एक से जरूर करनी है क्योंकि यहाँ हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये बहुत प्यारा स्लोगन है कि स्व परिवर्तन से ही हम औरों का परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु जैसे एक के साथ एक दिया जलाने से दीप माला हो जाती है ऐसे ही सब एक एक करके भी अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे, वैल्यूज को धारण करेंगे तो अवश्य ही एक एक करके भी पूरा समाज ही एक दिन मूल्यों से भरपूर हो जाएगा। तो अंत में मैं कहना चाहूंगी कि इस समाज को संकट से निकालना होगा, इस समाज को संकट से निकालना होगा, मंजिल पर पहुंचना है तो चलना होगा, मंजिल पर पहुंचना है तो चलना होगा। दुनिया में अंधेरा बहुत है, समस्याएं बहुत हैं, दिए की लो हो तुम, दिए की लो हो तुम, सूरज निकलने तक चलना होगा, सूरज निकलने तक चलना होगा। ओम शांति, धन्यवाद।
धन्यवाद प्रेम दीदी जी का, बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपना वक्तव्य दिया। जिंदगी को अगर खूबसूरत बनाना है तो अपने जीवन में दिव्य गुणों को अपनाना होगा। जिंदगी खूबसूरत है बस हमें जीना सीखना है, आए हुए जख्मों को पीना सीखना, और हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे जब हम उस खूबसूरत सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, उस ईश्वर पिता को याद करेंगे, और जो गुणों का भंडार है, सर्व शक्तियों का भंडार है, उससे प्राप्त गुण और शक्तियों का आनंद लेंगे तो सचमुच हमारा जीवन अपने आप में इंस्पिरेशनल बन जाएगा। तो किसी ने सच ही कहा है कि जलता हुआ दीपक भी इस संसार को बहुत बड़ी शिक्षाएं देता है। जलते हुए दीपक से इतना तो सबक सीखना होगा कि दूसरों को रोशन करने के लिए किसी को तो जलना होगा। तो समाज सेवक की जीवन भी कुछ ऐसी ही है कि संसार को रोशन करने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए कुछ तपना होता है। तो ऐसे ही हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी हमारी राजयोगिनी तपस्विनी दीदियां जिन्होंने अपने जीवन में त्याग तप से अपने जीवन को महान बनाया है, और ऐसी ही आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी से हम आशीर्वचन सुनेंगे। आशीर्वचन सुनने से पूर्व हम कुछ पल के लिए, थोड़े समय के लिए हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। हमारे बीच में एक सीनियर राजयोग का टीचर बहन अन्नपूर्णा बहन जो इंदौर से हम सबके बीच पधारी है, आपसे अनुरोध है कि आप राजयोग का अभ्यास हम सबको कराएं। अन्नपूर्णा बहन, आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं सोशल सर्विस विंग की इंदौर से।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा के प्रिय संतान, सम्मान्य मंच, सभा का श्रृंगार, मेरे सभी प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सब बहुत समय से हमारे जीवन में जो वैल्यूज का श्रृंगार होना चाहिए उस बारे में बहुत अच्छे अच्छे विचार विमर्श हुए और वक्ताओं ने बहुत अच्छे अच्छे दीदियों ने स्वामीनाथन भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से हम सबके सामने अपना विचार रखा। परंतु हमारे अंदर जो वैल्यूज हैं, सद्गुण हैं, सभ्यताएं हैं, वो सुसुप्त अवस्था में चली गई है, तो कैसे हम अपने सद्गुणों को जागृत करें? क्योंकि पहले था तो इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सेवाएं करने के बाद यदि कोई मेहमान आ जाए तो भी उनका सत्कार बड़ी खुशी से किया करते थे। दरवाजे के बाहर ही लिखा हुआ होता था अतिथि देवो भव, और थोड़े समय बाद ये लिखने लगे शुभ लाभ, अर्थात शुभ करेंगे तो लाभ होगा। और आज क्या लिखा होता है? कुत्तों से सावधान। माना कैसे हमारे अंदर की सभ्यताएं, वैल्यूज कहां चली गई। तो ऐसे समय पर जब हम अपने वैल्यूज को, सद्गुणों को जगाना चाहते हैं तो जगाने वाला कोई चाहिए। अब जगाने के लिए परमपिता परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं और हमारे अंदर के सद्गुणों को पुनः जागृत कर रहे हैं। उसके लिए हमें उनसे अपना संबंध जोड़ना होगा, तभी हम अपने सद्गुणों को जागृत अवस्था में लाकर सभ्यता से जीवन का आनंद ले सकेंगे और जीवन की यात्रा को सुखद बना सकते हैं। भले समाज सेवा में कई उतार चढ़ाव आते हैं तो सहन करना पड़ता है, या बहुत ऐसे अपमान, कई बातें सुननी मिलती है, तो भी हम कहते हैं कि थोड़ा झुकना चाहिए जीवन में, क्योंकि झुकेंगे तभी हम महान बनेंगे। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो इसलिए झुक करके अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो सहज औरों को भी झुका सकते हैं। ऐसे ही हम अपने अंदर के सद्गुणों को जगाने के लिए चलिए थोड़ी देर के लिए उस परमपिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने के लिए आध्यात्मिक जगत की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा के लिए उस परमपिता परमात्मा से हम मिलन मनाने के लिए चलें। तो सभी आरामदायक स्थिति में बैठें, थोड़ी देर के लिए अपना कंफर्टेबल पोजीशन बना करके रखें और अनुभव करें कि तन एक मंदिर है और इस मंदिर में मस्तक के मध्य चमकती हुई मैं एक दिव्य ज्योति हूँ। और अपने मन और बुद्धि को ऊपर की ओर लेकर चलिए। सूर्य चांद तारागण से भी पार, ब्रह्म महतत्व में जहां चारों ओर लालसा प्रकाश है,
और मेरे परम प्यारे परम पिता परमात्मा, परम ज्योति, गुणों के सागर, शिव बाबा, दिव्य ज्योति विराजमान हैं, अनुभव कीजिए। मैं आत्मा जो गुणों के सागर हैं, उनके सानिध्य का अनुभव कर रही हूँ। परम ज्योति शिव बाबा की असीम शक्तियां किरणों के माध्यम से मुझ आत्मा में आती जा रही है। और मैं महसूस कर रही हूँ परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण मुझ आत्मा में समाती जा रही है। और ऐसे सर्व शक्तियों को, सर्व गुणों को अपने अंदर भरते हुए वापस अपने कर्म क्षेत्र पर जा रही हूँ। पिता से सर्व शक्तियां, सर्व गुणों को लेकर पूरे विश्व में फैलाते हुए विश्व के आत्माओं को शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद का प्रकंपन फैलाते हुए वापस कर्म क्षेत्र पर आ रही हूँ। इस डायमंड हॉल में शरीर में मस्तक के मध्य मैं आत्मा सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए विराजमान हो गई। और मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों के मालिक सभी कर्म इंद्रियों को परमात्मा से प्राप्त की हुई शक्तियों को देते हुए वातावरण में शक्तियां शांति प्रेम फैलाते हुए शक्तियों का गुणों का सदुपयोग अपने जीवन में सदा करती रहूंगी। पिता से मिले हुए
सर्व शक्तियां सर्व गुणों को पूरे समाज में प्रदान करती रहूंगी। कर्म और बोल से खास मैं समाज को वैल्यूज का दान करती रहूंगी। मैं प्रेरणा का स्रोत बनूंगी, प्रेरणा का स्रोत बनूंगी, प्रेरणा का स्रोत बनूंगी। ओम शांति शांति शांति।
बहुत सुंदर अन्नपूर्णा बहन जी ने हम सबको राजयोग का अभ्यास कराया और राजयोग एक ऐसी साधना है जो हमारा आत्मिक बल मनोबल बढ़ाता है, हमारे जीवन में हमें मन की शक्ति देता है और गुणों को शक्तियों को अनुभव करने का एक उत्तम माध्यम है, गुणों को विकसित करता है। तो आइए, समय की घंटियां भी आगे बढ़ती जा रही है, अब बारी है आशीर्वचन सुनने की और हम सबको अपने आशीर्वादों से भरपूर करने के लिए हमारी आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी, जो दिल्ली की सोशल सर्विस विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शान हैं, आपके गुण और विशेषताओं पर तो स्वयं खुदा भी मेहरबान, आपने अपने जीवन को समर्पित करके उस प्यारे परमात्मा का भी आश पूरी की है और अपने दिव्य प्रकाश से इस वसुंधरा को रोशन कर रही है आदरणीय आशा दीदी जी।
ओम शांति। आप सभी भी मिलके बोलिए ओम शांति, बोलिएगा प्यार से ओम शांति, एक बार और थोड़ा सा प्यार ऐड कर दीजिए ओम शांति। हम सभी बहुत ही शांति से सभी वक्ताओं के विचार सुन रहे थे और अभी हम सभी वक्ताओं ने जो सुनाया उसका सार वह हम समझेंगे और क्या हमें जीवन में करना है उस बात की ओर ध्यान देंगे। आप सभी सुन रहे हैं कि हम समृद्ध समाज की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, इसका अर्थ ये है कि कोई चीज खराब हो गई है बिगड़ गई है तो पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। इसका अर्थ ये भी है कि हम इस समाज से कहीं भागना नहीं चाह रहे, इसी को सुधारना चाहते हैं। कैसा समाज चाहते हैं? जब हम पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण कहते हैं तो जरूर पहले भी कोई समाज था, बेहतर समाज था जिसको हम याद कर रहे हैं। आप इतनी सुंदर मंच को यहाँ पर बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सभी को बहुत ही एकाग्रता से सुन भी रहे हैं। यहाँ पर सुंदर श्रेष्ठ समाज के चित्र दिखाए गए हैं, वह सुंदर समाज जिसे हम भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, जिसे हम स्वर्ग पैराडाइज हेवन अल्लाह का बगीचा सुखदाम भी कह दिया करते हैं,
तो वह स्वर्णिम समाज जिसमें प्रत्येक बालक श्री कृष्ण जैसा और प्रत्येक बालिका श्री राधे जैसी, नर नारायण जैसा और नारी श्री लक्ष्मी जैसी, ऐसा सुंदर समाज जहाँ पर हर मानव देव मानव कहलाता था, हरेक के अंदर सर्वगुण थे, उन्हें कहते ही हैं हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो श्रेष्ठ समाज, समृद्ध समाज वैसा था, गुणों से समृद्ध था, मालामाल था, हर चीज की समृद्धि थी, हर चीज में मालामाल थे, प्रकृति भी सतो प्रधान थी और आपसी जो पारिवारिक प्यार था, पारिवारिक संबंध बहुत ही तालमेल वाले सुंदर थे, एक दूसरे के प्रति समझ रखने वाले, अंडरस्टैंडिंग वाले थे। ऐसे चित्र अब मंच पर भी देख रहे हैं। ऐसा सुंदर समाज जहाँ सोने के महलों का जिक्र किया करते हैं, दूध घी की नदियाँ बहती हैं ये हम कहते हैं, जहाँ शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। देखिए ये जो नक्शा है, जो मैप है, ये सुंदर समाज का हम सभी के समक्ष है। अब ऐसा समाज फिर से बनाने के लिए परमात्मा ने आप सभी जिम्मेवार समाज सेवियों को यहाँ आमंत्रित किया है, ये आपका परम सौभाग्य है। भिन्न भिन्न प्रकार से आप समाज की सेवाएं कर रहे हैं, परंतु अभी एडिशन जो करनी है वो केवल सेवा करते हुए मूल्यों की तरफ ध्यान देना है। और मैं तीन तीन बातें जो मूल्यों से संबंधित हैं वो सार में बताऊंगी। पहली चीज, हमें मन, वचन और कर्म तीनों से मिलकर एक साथ समाज की सेवा करनी है। हरे के प्रति मन से शुभ भावना, सद्भावना रखें, वचन हम सत्य बोलें, मधुर बोलें, सुख देने वाले, आशीर्वाद देने वाले, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले बोल वो भी साथ में बोलें। और कर्म ऐसे करें जो उन्हें सोचना ना पड़े कि देव मानव कैसा होता है, हमारा जीवन स्वयं का इतना देव तुल्य हो, गुणों से संपन्न हो, जो हम उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाएं। तो मन, वचन, कर्म तीनों की सेवा एक साथ करें। ऐसे परमात्मा को हम कहते आए, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हम केवल धन लगाएं सेवा में वही पर्याप्त नहीं है, तन लगाना भी जरूरी है, मन लगाना भी जरूरी है और धन लगाना भी जरूरी है। उसके साथ परमात्मा में ये कहते हैं कि तीन वैल्यूज जो हमारी आदरणीय दादी जी, जो इस संस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ रही, उन्होंने कहा कि तीन गोलियां हर रोज सुबह हरे को खा लेनी चाहिए, वो है शांति, प्रेम और धीरज। जैसे आज आप सभी बैठे हुए हैं तो मुझे लग रहा था कि आज सुबह जरूर आपने गोलियां खा ली होंगी, तभी आप इतनी धीरज से बैठे हुए हैं। तो इन तीन गोलियों का भी सेवन हम प्रतिदिन करें। और एक बात और, आजकल हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हर चीज के साथ जीएसटी हमको लगाकर मिलता है। अब ये जीएसटी हम अपने लिए भी, ये भी तीन शब्द हैं जीएसटी, हम अपने लिए लागू कर लें, वह क्या है? जी का अर्थ है गुड थिंकिंग। क्या ये हम सभी सुन रहे हैं? शुद्ध विचार, अच्छे विचार। तो अपने विचारों को शुद्ध बना लें, हमेशा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा सोचें। चाहे मेरा अपना शरीर है, चाहे धन है, चाहे साधन है, चाहे छोटा सा तिनका भी है, उसके लिए भी शुद्ध और शुभ सोचें। सबका सम्मान करें तो गुड थिंकिंग। और दूसरी चीज एस, सिंपल लिविंग, सिंप्लिसिटी, सरल स्वभाव हमारा हो। हर समय हम अपने आप को जैसा एडजस्ट करना चाहें वैसा कर सकें, अपने आप को वैसा ढाल सकें, तो हम सिंप्लिसिटी अपने जीवन में लाएंगे तो सहज समाज की सेवा कर सकेंगे। और टी फॉर है टेंशन फ्री। यदि आप टेंशन फ्री रहेंगे तब तो दूसरे को खुशी दे सकेंगे, दूसरे को भी टेंशन फ्री कर सकेंगे। तो ये भी तीन अक्षर हैं। तो इन तीन तीन के महत्व को समझते हुए परमात्मा को कहते हैं गॉड, यहाँ भी तीन अक्षर हैं, जी ओ डी। तो तीन तीन के महत्व को समझते हुए अपने हाथों को हम देखें, हमारी उंगलियों में तीन तीन के निशान हैं, ठीक है, तीन तीन के निशान हैं। तो इसको देखते हुए हर कार्य में उस त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ परमात्मा को, गॉड को याद करें। हम परमात्मा से दया मांगते हैं, दया का उल्टा है याद। परमात्मा को याद करें तो दया हो जाएगी। तो जब हम परमात्मा से दया लेते रहेंगे स्वतः ही दूसरों को भी दया हम दे सकेंगे। हमारा ही परिवार है, सारा विश्व हमारा परिवार है, उस विश्व पिता की हम सभी संतान हैं, सभी को अपना समझते हुए बिना किसी गिनती के, बिना स्वार्थ के हम समाज को दें। जब हम देंगे तो रिटर्न में अवश्य हमें मिलेगा। तो हम सभी मिल करके ऐसा श्रेष्ठ बेहतर समाज, स्वर्ग में समाज बना सकेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का, आपने शॉर्ट एंड स्वीट रूप से बहुत सुंदर संदेश दिया। और तीन गोली जो हमें रोज खानी है, पीस, पेशेंस एंड लव, जो सभी खाए, सभी की प्रेजेंस ये बता रही है कि बहुत सुबह से ही आप सभी इतनी पेशेंस के साथ बैठे हैं और ज्ञान के मोती ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जो यहाँ बैठे हुए हैं पीस पेशेंस की गोली लेकर एक बार आप अपने लिए ताली बजाएं। और हमारे बीच हमारी गेस्ट बहन ब्रजलता जी को मैं हमारी आदरणीय दीदियों से, आशा दीदी से अनुरोध करती हूँ कि हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर बहन ब्रजलता जी को ईश्वरीय सौगात और प्रसाद देकर के सम्मानित करें। और एक अनाउंसमेंट है, ये पर्स यहाँ पर कोई भूल गया है गुम हुआ है किसी का तो प्लीज देर से ले ले, और एक मोबाइल भी है, किसी का अगर मोबाइल गुम हुआ हो तो वो भी स्टेज के बैक साइड से आप ले सकते हैं। और खुशखबरी है कि रात को 9 से 10 कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, इस कल्चरल प्रोग्राम में भी आप जरूर शामिल होए। और सुबह, कल सुबह 6 से 6:30 म्यूजिकल एक्सरसाइज होगी, और सुबह 6:30 से 8 आपका मेडिटेशन सेशन होगा, तो सभी को उसमें भी जरूर उपस्थित होना है। और जिन्होंने सौगात नहीं ली है, जो भी गेस्ट आए हैं, वो कल सुबह क्लास सेशन के बाद सौगात ले सकते हैं। तो हमारी स्टेज पर उपस्थित सभी राजयोगिनी तपस्विनी दीदियों का, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बहन ब्रजलता जी का, और आप सभी विशेष मेहमानों का, सभी सोशल वर्कर्स का दिल से धन्यवाद। आप सभी ने बहुत प्रेम से बैठकर आज इस सेशन का आनंद लिया। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा किनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या, ए दिल तू जी हजारों के लिए, ए दिल तू जी हजारों के लिए। ओम शांति, ओम शांति। हम सभी लास्ट में 2 मिनट साइलेंस में बैठकर परमात्मा का शुक्रिया अदा करके इस सेशन का समापन करेंगे।
होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय, सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों, अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों, सहयोग करो सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों।